आज है 11 अप्रैल दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अल्जीरिया में फौजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 257 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा सीरिया पर मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। कितनी खतरनाक है रूस और अमेरिका की ये तनातनी।
जो भी हमला अमेरिका सोच रहा है कर सकता है, उससे अंदेशा ये हो रहा है कि अगले 6 महीनों में काफी घमासान टकराव होने की उम्मीद है।
सुनिएगा दुनिया जहान में। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश बलात्कार कांड के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और गोल्ड कोस्ट में भारत को मुक्केबाजी में बढ़त मिली।
इजी था। मैंने सोचा था कि इजी होने वाला, वैसे ही बाउट थी, लेकिन थोड़ा सा मेरे को एक दोबारा हेडबट लग गए, उसी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बाउट इजी थी।
ये सब होगा कार्यक्रम में आगे, पर विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। अल्जीरिया में एक भयावह विमान हादसा हुआ है। देश के सरकारी टेलीविजन का कहना है कि राजधानी अल्जीयर्स के पास एक सैन्य एयरपोर्ट से उड़ान भरने के ठीक बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम 257 लोग मारे गए हैं। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अल्जीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस हादसे में मारे गए ज़्यादातर लोग सैन्यकर्मी और उनके परिवार के सदस्य हैं। सीरिया में रासायनिक हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा रूस तैयार रहे क्योंकि मिसाइल आएगी। इससे पहले ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को जानवर करार दिया था और कहा था कि रूस असद के सहयोगी के तौर पर खुद को अलग कर ले। दूसरी तरफ लेबनान ने रूसी राजदूत से कहा दूसरी तरफ लेबनान में रूसी राजदूत ने कहा है कि सीरिया में कोई मिसाइल दागी गई तो उनका देश बीच में ही मार गिराएगा। जब से सीरियाई शहर डोमा में गैस हमले में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आई है, तब से रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। इस तनाव पर सीरिया में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत हेनरी हॉगर ने कहा सीरिया में पश्चिम के नेताओं को किसी भी मिसाइल हमले को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यहाँ किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले दिमाग में मुकम्मल रणनीति रखने की जरूरत है। सीरियाई संघर्ष में जल्दबाजी में किसी भी सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये थे सीरिया में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत हेनरी हॉगर के शब्द। पाकिस्तान में 8 साल की एक लड़की से कथित रेप और जिंदा जलाने को लेकर काफी गुस्सा है। नूर फातिमा पिछले हफ्ते घर से मिठाई खरीदने गई थीं और उसके बाद नहीं लौटीं। बाद में नूर बेहोशी की हालत में मिली और उनका शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। सोमवार की रात नूर की अस्पताल में मौत हो गई। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने इसे भयावह अपराध बताया है। नूर फातिमा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार के सरकार के एक मंत्री ने बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों का दौरा किया है। करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। रोहिंग्या कैंपों में म्यांमार की तरफ से यह पहला आधिकारिक दौरा है। म्यांमार के मंत्री विन म्याट अए के साथ इस दौरान बांग्लादेश के रिफ्यूजी कमिश्नर मोहम्मद अबुल कलाम भी मौजूद थे। अबुल कलाम ने कहा कि म्यांमार का यह नैतिक दायित्व है कि रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों की हालत को देखे। इस मौके पर म्यांमार सरकार के मंत्री ने कहा
I really appreciate the government of the Bangladesh for their support to the camps.
मैं वाकई शरणार्थी कैंपों में मदद के लिए बांग्लादेश की तारीफ करता हूं। हमारी मुलाकात काफ़ी कामयाब रही है। हमें पहले से हालात के बारे में पता था। अब सबसे ज़रूरी यह है कि जितनी जल्दी हो सके स्वदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो। हम लोग इन्हें नागरिकता देने की भी कोशिश करेंगे। ये थे बांग्लादेश में आए म्यांमार सरकार के मंत्री विन म्याट अए के शब्द। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में गोलीबारी में सेना के एक जवान और 2 नागरिकों की मौत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के संघर्ष में ये मौतें हुई हैं। इसमें 20 लोग घायल भी हुए हैं। जर्मनी ने जर्मन कंप्यूटर नेटवर्क पर पिछले साल दिसंबर महीने में रूसी हमले की बात कही है। जर्मनी के खुफिया विभाग ने इस तरह के और हमले की चेतावनी दी है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अल्जीरिया में एक सैन्य हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ सूत्रों ने कहा है कि 257 लोग इसमें मारे गए हैं। सरकारी टेलीविजन पर यह खबर प्रसारित की गई है कि बोफारिक फौजी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने कहा है कि जहाज में पोलिसारियो फ्रंट के कई सदस्य थे। ये संगठन पश्चिमी सहारा से आजादी की मांग कर रहा है और इसे अल्जीरिया का समर्थन हासिल है। इकबाल अहमद के पास और जानकारी है।
ये फौजी हवाई जहाज बोफारिक फौजी हवाई अड्डे से बेशर फौजी अड्डे की ओर जा रहा था। रिपोर्टों में कहा गया है कि हवाई जहाज के ज्यादातर सवार फौजी थे। दुर्घटना स्थल से आ रही तस्वीरों में धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस विमान हादसे में मरने वाले लोगों में पोलिसारियो फ्रंट के भी लोग शामिल हैं। पोलिसारियो फ्रंट वो विद्रोही संगठन है जो मोरक्को से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और अल्जीरिया उन्हें समर्थन देता है। टेलीविज़न रिपोर्टों में कहा गया है कि घटनास्थल पर 14 एम्बुलेंस भेजे गए हैं और घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अल्जीरिया के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया है। बीबीसी संवाददाता राना जव्वाद का कहना है कि ये जहाज सोवियत संघ युग का था। जिस हवाई अड्डे से जहाज उड़ा वो राजधानी अल्जीयर से 30 किलोमीटर दूर है। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी दुर्घटना स्थल पहुंच चुके हैं। 4 साल पहले अल्जीरिया में सेना के लोगों और उनके परिवार वालों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई थी।
अल्जीरिया में विमान दुर्घटना में 257 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए रूस को चेतावनी दी है कि वह सीरिया पर हवाई हमले के लिए मिसाइल हमले के लिए तैयार रहें। उन्होंने लिखा है, रूस तैयार हो जाओ, बेहतरीन नई और स्मार्ट मिसाइल आने वाली है। सीरिया के डूमा शहर में कथित रूप से हुए गैस हमले में लोगों के मारे जाने के बाद से रूस और अमरीका के बीच पहले से मौजूद कड़वाहट बढ़ गई है। आइए सीधे चलते हैं अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर, जहां बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी हमारे संपर्क में हैं टेलीफोन के जरिए। इरम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए बहुत सारी बातें कही हैं। इस वक्त हमारे जो सामईन हैं, जो श्रोता हैं, उनको बताइए कि क्या चल रहा है।
जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है अक्वाम मुत्तहदा की कौमी सलामती की जो काउंसिल है उसमें वोट भी किया गया इसी हवाले से, ये जानने के लिए कि किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीकात की जाए कि जो सीरिया में मुबैना केमिकल अटैक किया गया है वो किसकी जानिब से हुआ है। उसकी तहकीकात के लिए वोटिंग की गई उस ड्राफ्ट पे जो कि अमरीका ने बनाया, और दूसरा वो ड्राफ्ट था जो रशिया ने बनाया लेकिन रशिया ने वीटो कर दिया। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा कि वो उनके पास 2 दिन है और वो डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि किस तरह से जो ताज़ा एलिजिडली केमिकल अटैक हुआ है उसको डील किया जाए। और आज जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही ट्वीट में कहा कि वो जो है रशिया तैयार हो जाए, उनको जो है मजीद मिसाइल आएंगे और वो हर हालत में चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि सीरिया में केमिकल अटैक जो है वो कहाँ से आया और वो क्या वो केमिकल अटैक था भी या नहीं, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर वहाँ से रिपोर्ट्स आना बड़ी मुश्किल है। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि क्या केमिकल अटैक हुआ है या नहीं हुआ। तो इसलिए अभी तक इसको मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये अटैक हुआ है, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज जो हैं और स्पेशली वो एजेंसीज जो कि नजर रख रही हैं केमिकल अटैक्स पे, उनका ये कहना है कि अलेजेडली ये अटैक हुआ है।
हाँ, लेकिन बात इरम बात तो अब ये थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ताज़ा नई स्मार्ट मिसाइल आ रही है और सीधे सीधे वो रूस को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, और रूस कह रहा है कि कोई मिसाइल वहाँ न दागिए, हम उसको तोड़ देंगे या उस पर उसको बेकार कर देंगे। तो ये मसला तो अब लगता है काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है।
जी बिल्कुल, आई मीन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने लैटिन अमेरिका के दौरे पर जाना था, वहाँ पे کانفرنس ایک ہونی تھی وہاں پر جانا تھا لیکن وہ اس وجہ سے نہیں گئے. انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا بلکہ کینسل کر دیا اور اپنی جگہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نارتھ کوریا کا اگر معاملہ لے لیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کے ذریعے ڈائریکٹ تھریٹن کرتے آئے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے ان لوگوں کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی بات نہیں سن رہی, امریکہ کے خلاف کام کر رہے ہیں.
جی.
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ پریکٹیکلی کتنا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی دھمکیاں وہ ٹویٹر کے ذریعے دیتے آئے ہیں ماضی میں بھی.
واشنگٹن سے بی بی سی سنواداتا ارم عباسی, بہت بہت شکریہ آپ کا. سیریا کے معاملے میں ہی وشو سواستھیہ سنگٹھن نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے وہاں کے ڈوما شہر میں ہوئے کتھت رسائنک حملے سے پربھاوت سینکڑوں لوگوں کا علاج چل رہا ہے. سنگٹھن نے مانگ کی ہے کہ اس کے کرمچاریوں کو گھٹنا ستھل تک پہنچنے دیا جائے. سوریانشی پانڈے کے پاس اور جانکاری ہے.
وشو سواستھیہ سنگٹھن یعنی ڈبلیو ایچ او کے ادھیکاری ڈوما میں موجود اپنے سہیوگیوں سے ملی رپورٹ کی پشٹی کرنا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ 500 سے ادھک لوگوں میں رسائنک حملے کے لکشن پائے گئے ہیں. وشو سواستھیہ سنگٹھن نے کہا ہے کہ حملے میں 70 سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں. سیریائی سرکار ان حملوں میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کر رہی ہے. امریکہ نے رسائنک حملے کی خبروں کے بعد سیریا پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے. امریکہ کے اس بیان کے بعد سیریا کی آواز بن کر روسی سرکار سامنے آئی ہے. روسی سرکار کے پروکتا ڈیمٹری پیسکوو نے کہا ہے کہ سیریا کے حالات اور خراب نہیں ہونے دیں گے.
ہمیں امید ہے کہ کوئی بھی دیش سیریا کے حالاتوں کو سمجھتے ہوئے ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سیریا کے اندر خراب حالات اور خراب ہو.
تو وہیں لبنان میں روس کے راجدوت الیگزینڈر زیپسکن نے امریکہ پر تیکھی پرتکریا دیتے ہوئے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن دوارا جاری کی گئی چیتاونی کے بارے میں کہا.
اس کیا ہونا کا دور بھی
اگر امریکہ نے سیریا پر کسی طرح کی سینیہ کاروائی کی تو روس امریکہ کی میسائل کو دھوست کرنے میں دیری نہیں کرے گا.
دونوں دیشوں کے بیچ سیریا پر ٹکراو اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ روس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو روس امریکہ کی لانچ سائٹ پر حملہ کرنے سے بھی نہیں چکے گا. وہیں وشو سواستھیہ سنگٹھن رسائنک حملے کی جانچ کی بات کرتا ہی نظر آ رہا ہے. ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ ان کے کرمچاریوں نے 500 لوگوں میں رسائنک حملے کے لکشن دیکھے ہیں. ان لکشنوں میں سانس لینے میں تکلیف, آنکھوں میں کھجلی اور نروس سسٹم میں گڑبڑی شامل ہے.
اب سے کچھ ہی دیر میں دنیا جہان میں سنیے گا کہ روس اور امریکہ کے بیچ گہراتا تناؤ کن خطرناک حدوں تک پہنچ سکتا ہے, لیکن پہلے ایک نظر بھارت کی خبروں پر.
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے.
اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں نابالغ لڑکی کے ساتھ کتھت بلاتکار, پیڑت لڑکی کا ودھائک پر آروپ لگانا اور اس کے پتا کی پولیس حراست میں موت کا معاملہ اب ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے. اس بیچ ایس آئی ٹی کی ٹیم نے اناؤ میں پیڑت پریوار کے گاؤں پہنچ کر دونوں پکشوں کے لوگوں کے بیان درج کیے. وہیں لکھنؤ میں ودھائک کلدیپ سینگر نے ڈی جی پی سے مل کر پیڑت لڑکی کا نارکو ٹیسٹ کرانے کی مانگ کی ہے. پورے گھٹنا کرم پر سنیے سمیر آتمج مشر کی رپورٹ.
اناؤ کانڈ کی سی بی آئی جانچ کرائے جانے سمبندھی یاچیکا پہلے سپریم کورٹ میں دائر ہوئی جسے کورٹ نے سویکار کر لیا. اس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی پولیس حراست میں پیڑت لڑکی کے پتا کی موت کا سوتہ سنگیان لیا اور 12 اپریل یعنی کل معاملے کی سنوائی کرے گی. اس بیچ راجیہ سرکار کی اور سے معاملے کی جانچ کے لیے گٹھت ایس آئی ٹی کی ٹیم اے ڈی جی راجیو کرشن کے ساتھ آج پیڑت لڑکی کے گاؤں ماکی پہنچی اور لڑکی سمیت پریوار کے دوسرے سدسیوں کو بھی گاؤں لے کر گئی. بدھوار صبح ہی بانگرمئو کے ودھائک کلدیپ سینگر کی پتنی سنگیتا سینگر نے راجی کے پولیس مہانیدیشک او پی سنگھ سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کے پتی کو شڈینتر کے تحت پھنسایا جا رہا ہے.
ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پتی کا نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے, اس لڑکی کا کرا لیجئے. ہمیں اس لڑکی سے پوری سمپیتھی ہے, اس لڑکی کے عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کے پیچھے پولیٹیکل ایشو ہے, ہمارے پتی کو مہرا بنا دیا گیا ہے, لیکن ہمارے پتی نردوش ہے. پہلے آپ لوگ جانچ کروائیے, پہلے سے نہ ثابت کر دیجئے کہ اور بلاتکاری ہے. ہم لوگ کو مانسک آپ لوگ اتنا پرتاڑنا کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی یہی جان دے دیں گے اگر پورا ہم لوگوں کا ثبوت کچھ آپ لوگ دکھا نہیں رہے, خالی ایک پچھ دیکھ رہے ہیں.
سنگیتا سنگھ خود بھی راجنیتی میں ہے اور اس سمے اناؤ ضلع پنچایت کی ادھیکش ہیں. سنگیتا سنگھ میڈیا پر ایک طرفہ رپورٹنگ کا آروپ لگا رہی ہیں. تو اس بیچ کئی ایسے آڈیو ٹیپ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں جن میں پیڑت پکش کو دھمکیاں مل رہی ہیں. پیڑت لڑکی کے چاچا کا کہنا تھا,
ان لوگوں کے برابر میرے پاس فون آ رہے تھے اور گھر پہ میرے جا رہے تھے, دھمکی دے رہے تھے کہ ودھائک جی کے اوپر جو آپ نے 156(3) کی ایف آئی آر ڈالی ہے اس کو واپس لے لو, نہیں آپ لوگوں کا ہت نہیں ہوگا, اہت ہی ہوگا, یہاں پہ آپ لوگ رہ نہیں پاؤ گے, آپ دونوں بھائیوں میں سے دونوں کو ہی مار دیا جائے گا, एक का परिणाम है आपके साथ सामने, जो एक को उन्होंने मरवा दिया, एक मैं बचा हूं, हमें कब मरवा दें इसकी कोई गारंटी नहीं।
एसआईटी टीम के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी आज माखी गांव का दौरा किया। उन्नाव की पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अनु टंडन और समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव नीलम रूमिला सिंह भी पीड़ित लड़की के घर पहुंची। वहीं राजधानी लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के होने के कारण तमाम राजनीतिक सरगर्मियों के बीच इस मामले की भी खूब चर्चा रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने सरकार पर बीजेपी विधायक को बचाने का सीधा आरोप लगाया।
जो इन्वॉल्व है इनको गिरफ्तार करो, बल्कि उनको गिरफ्तार करने के बजाय लीपापोती होने का काम हो रहा है। इसमें तमाम अधिकारी दोषी हैं, सरकार के वो मुखिया दोषी हैं, सरकार के वो लोग दोषी हैं। ये कोई मामूली कांड नहीं है, हम तो आरोप सीधा लगा रहे हैं सरकार पर। भाई ये तो सच है कि बीजेपी के एमएलए, ये तो सच है, इसमें क्या दो राय है। मैं मतलब मेरे पास में पब्लिक डोमेन में है।
एसआईटी की टीम जिस वक्त माखी गांव का दौरा कर रही थी, बड़ी संख्या में मौजूद विधायक समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियां लहराते हुए एडीजी का घेराव भी किया। पीड़ित लड़की और उसके परिजनों को फिलहाल प्रशासन ने उन्नाव भेज दिया है और तनाव के चलते गाँव में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और समीर आत्मज मिश्र इस समय टेलीफोन के जरिए हमारे संपर्क में है। समीर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है कि क्या वो इस मुद्दे पर भी उपवास रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता चिन्मयानंद पर भी बलात्कार के आरोप हैं। ये प्रदेश की राजनीति में अचानक योगी सरकार के खिलाफ ये जो एक तरह से विपक्ष की आलोचना का दौर शुरू हुआ है, उसका थोड़ा सा अंदाजा बताइए।
जी राजेश जी, जैसा आपने कहा कि आलोचना का दौर शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है इसके पीछे योगी आदित्यनाथ सरकार जो कुछ काम कर रही है, कुछ घटनाएं जो है वो तो अपने आप किसी भी तरह से हो जाती हैं, जो कि कहना है कि उसका उसको कोई नहीं जान पाता है। लेकिन जो चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जो पूर्व गृह राज्य मंत्री है, उनका आपने जिक्र किया, उनके खिलाफ भी उनकी एक शिष्या ने 2011 में बलात्कार का आरोप लगाया था। उस मामले में हालांकि उन्होंने को हाईकोर्ट जाकर के चिन्मयानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके ले लिया था।
जी, जी।
लेकिन अब राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी है शाहजहांपुर प्रशासन को कि इस केस को वापस ले लिया जाए।
अच्छा, तो ये स्थितियां फिलहाल चल रही हैं। समीर, हमारे पास थोड़ा समय कम है इसलिए मैं आज आपको रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है दुनिया जहान का। सीरिया के डूमा शहर में कथित रासायनिक हमले के बाद से रूस और अमेरिका एक दूसरे की आंख में आग गड़ाए बैठे हैं। इस हफ्ते दुनिया जहान में संदीप सोनी बता रहे हैं कि ये तनाव किस हद तक बढ़ सकता है। दुनिया जहान,
दुनिया जहान। सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 10 किलोमीटर दूर विद्रोहियों के नियंत्रण वाले डूमा कस्बे में संदिग्ध रासायनिक हमले में कई लोगों की मौत की खबर आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कठोर भाषा में कई ट्वीट किए। उन्हीं में से एक ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
सीरिया में बिना सोचे समझे किए गए केमिकल हमलों में कई लोग मारे गए हैं, मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये जगह सीरियाई सेना के कब्जे में है और बाहरी दुनिया का यहाँ पहुँचना मुश्किल है। राष्ट्रपति पुतिन, रूस और ईरान जानवर बशर अल असद को समर्थन देने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी।
राष्ट्रपति ट्रंप के इस ट्वीट के आने से पहले सीरिया और रूस दोनों ही इस रासायनिक हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर चुके थे। हालांकि हमले वाले दिन डूमा में मौजूद एक डॉक्टर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर ये बताया,
I am working for the hospital for about 4 years, but the last 2 days were the worst.
मैं लगभग 4 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 दिन मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन थे। शनिवार की शाम रासायनिक हमले के शिकार बने कई लोग अस्पताल लाए गए। वो या तो एकदम सुन्न पड़े थे या उनके मुंह से खून निकल रहा था। हमारे पास उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन और मामूली दवाओं के सिवा कुछ नहीं था।
डूमा में डॉक्टर के इस ब्यौरे से अलग सीरिया की सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि सीरियाई अरब सेना चरमपंथ से लड़ने के लिए जब जब आगे बढ़ती है, दावा कर दिया जाता है कि रासायनिक हमला हुआ है जिसका फायदा चरमपंथियों को मिलता है। सीरिया में जारी मौजूदा संघर्ष की शुरुआत राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 7 साल पहले शांतिपूर्ण विद्रोह के रूप में हुई थी, जो अब एक बड़े गृह युद्ध में बदल चुका है। इस संघर्ष में 3.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई शहर तबाह हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है। देश में अशांति फैली तो विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। इस पर विपक्षी समर्थकों ने सरकार समर्थक सैनिकों के खिलाफ हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति असद ने विरोधी स्वरों को कुचलने की कसम खाई और इसे विदेश समर्थित आतंकवाद का नाम दिया। लेकिन सीरिया के इस संघर्ष में रूस, अमरीका और बाकी देश कहां से आ गए? अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
जो असद की हुकूमत है वो उसके दो फॉरेन सपोर्टर्स हैं, ईरान और रशिया। रशिया ने शुरू से सपोर्ट किया हुआ है, उनको अपना अलाय समझते हैं और उनके सपोर्ट में रशिया ने पिछले 2-3 साल से मुसलसिल आईसिस पर बमबारी की। और दूसरी, ईरान इसलिए भी सपोर्ट करता है कि वो शिया हुकूमत है और उन ईरान के तरफ से हिजबुल्ला फाइटर भी असद की हुकूमत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीरिया में जो आईसिस है उसके खिलाफ अमेरिका लड़ता है, सीरिया में जो कर्डिश फाइटर्स हैं उसके खिलाफ तुर्की लड़ रहा है, और जो भी असद की गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं रशिया और ईरान।
सीरिया का संघर्ष जितना बाहर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जमीन के नीचे से निकलने वाला तेल और तेल की राजनीति इस संघर्ष की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका अदा करती है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व मामलों के जानकार प्रोफेसर कमाल पाशा बताते हैं,
सीरिया की पॉलिसी है अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे, उस पे नजर डालना चाहिए क्योंकि सीरिया लगातार अपना गोलान हाइट्स इजरायल से मांग रहा है जो कि वो अमेरिका के सपोर्ट से मना कर रहा है। दूसरी बात ये है कि अरब स्प्रिंग के बाद जो रेजिम चेंज हुआ लीबिया में, इजिप्ट में, टूनिशिया में और अन्य मुल्कों में, यहाँ कुछ लंबाई खींचता जा रहा है, इसलिए कि वहाँ दूसरे गुट भी जैसा हिजबुल्ला है, तुर्की है, ईरान है, रशिया है, सऊदी अरेबिया, कतार, अन्य मुल्क भी इसमें शामिल हो गए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि कतार, सऊदी अरेबिया और खाड़ी के देशों से वहाँ का तेल और गैस सीरिया होते हुए यूरोप को पहुँचाए। इसमें ईरान का भी गैस और तेल शामिल करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के तेल और रेजिम चेंज और रशिया का जो सीरिया के साथ सपोर्ट है अपने नेवल बेसिस, मिलिट्री बेसिस के लिए, इन सब चीजों को मिलके जो है सीरिया में लगातार लड़ाई जारी है जिसमें ईरान, तुर्की, इजराइल, हिजबुल्ला, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक स्टेट, तो ये सब बेसिकली अमेरिकन कंट्रोल एनर्जी रिसोर्सेस को डाइवर्ट करने और डोमिनेट करने की वजह से हो रहा है।
जानकार मानते हैं कि सीरिया में इस समय अमेरिका से ज्यादा वजनदारी रूस की है। रूस ने सीरिया में बाकायदा अपने ठिकाने बना रखे हैं और सीरिया के आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह उसकी मौजूदगी है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डूमा में संदिग्ध रासायनिक हमले के बाद रूस, ईरान और सीरिया के राष्ट्रपति असद को जिन शब्दों में चेतावनी दी है उससे क्या आने वाले दिनों में सीरिया की मौजूदा तस्वीर बदल भी सकती है? प्रोफेसर मुक्तदर खान को ऐसा नहीं लगता।
रशिया के इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुतिन से बात की और उनको मुबारकबादी दी और उनके साथ कोई सख्ती से बात नहीं है। तो वॉशिंगटन एक किस्म से स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है रशिया के, कहते तो कई चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि लोगों की नजर में रशिया अभी भी वैसे ही है जैसा हम लोग 1970s-80s में सोवियत यूनियन को सोचते थे। अगर आप एक्चुअली जाके देखें तो रशिया की इकोनॉमी इटली की इकोनॉमी से भी छोटी है। ज्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, वो हथियार में इन्वेस्ट करता है और नई नई टेक्नोलॉजी जरूर क्रिएट करता है, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी नहीं है जो एक ग्रेट पावर में होती है कि वो सस्टेन कर सके प्रेजेंस दूसरे मुल्कों में ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इसके विपरीत प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा और शब्द गौर करने लायक हैं। कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया से पूरी तरह वापसी करना चाहते थे, लेकिन अमरीकी रक्षा मुख्यालय, पेंटागन और खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रंप की इस योजना को 6 महीने के लिए टाल दिया है और अब अमरीका सीरिया में कुर्दों की मदद के लिए अपने ठिकानों का विस्तार करना चाहता है। प्रोफेसर कमाल पाशा बताते हैं,
सबसे खतरनाक खतरनाक वार्निंग अमेरिका के कोई राष्ट्रपति ने रूस को दिया है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन का नाम लेके पहली बार उन्होंने ये धमकी दी है, जिसमें उन्होंने असद को भी हैवान के लखब से जिक्र किया है। जो भी हमला अमेरिका सोच रहा है, कर सकता है, उससे अंदेशा ये हो रहा है कि अगले 6 महीनों में काफी घमासान टकराव होने की उम्मीद है।
सीरिया के संघर्ष में शामिल अधिकतर समूहों और देशों पर ये आरोप है कि वो बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और राष्ट्रपति असद के समर्थक अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। इससे सीरिया में पहले से मौजूद जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को भी फलने फूलने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ सीरियाई सरकार के मुख्य समर्थक रूस और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमरीका, तुर्की और सऊदी अरब विद्रोहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सीरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र की अभी तक की भूमिका बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं रही है। ऐसे में सीरिया का संकट खत्म कब होगा, कैसे खत्म होगा, इसका उत्तर फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आता।
ये थी दुनिया जहान और अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। भारत को डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक मिला है। मैंने गोल्ड कोस्ट में बीबीसी संवाददाता रेहान फजल से पूछा कि क्या सोना बरसा।
देखिए, सोना बरसा तो नहीं, एक स्वर्ण पदक मिला है भारत को आज। श्रेयसी सिंह महिला डबल ट्रैप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम शॉट पर इमा कॉक्स के बिल्कुल बराबर थी, शूट ऑफ हुआ और श्रेयसी ने बेहतरीन शॉट लगाकर सोना जीता। यहां आपको बता दें कि श्रेयसी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, जो कि एक जमाने में एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। और इसके अलावा ओम प्रकाश मिथरवाल ने पुरुष 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। जीतू राय से बहुत उम्मीद थी, डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और इसके अलावा मित्तल ने भी एक कांस्य पदक जीता है भारत के लिए।
जाहिर सी बात है, ये खिलाड़ी भारत का मस्तक ऊंचा किए दे रहे हैं। रेहान फजल, बॉक्सिंग के रिंग से क्या खबर है?
देखिए, बॉक्सिंग में आज मैरी कॉम ने 45 किलोग्राम के फाइनल में वो पहुंच गई हैं, श्रीलंका की अनुभा को हराकर। बहुत कॉशस थी, ऑल आउट नहीं गई हराने में, और मैच के बाद बुरी तरह से पसीने में तरबतर वो आई मिक्स जोन में। उन्होंने बताया कि वो अनुभा से पहले भी भिड़ चुकी हैं सैफ खेलों में, इसलिए उन्हें पता था कि वो कैसे लड़ेंगी। मैरी कॉम ने कहा,
मैं इसका स्ट्रेटजी सब पता, प्लान करके ऐसे ऐसे, और एनर्जी अननेसेसरी लॉस नहीं करना, बुम करके आराम से दिमाग काम, स्टे काम, यू नो, तो इजी लेके, लेकिन इजी वो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आराम से कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत सिंसियर और बहुत केयरफुल में।
सरिता देवी ने 60 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर से अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वो हार गईं।
बहुत अच्छा मुकाबला था, ऑलरेडी ये लड़की पहले प्रोफेशनल प्लेयर भी था, और स्वीडन से ऑस्ट्रेलिया में आके उसने शिफ्ट होके ऑस्ट्रेलिया में रह के ये ऑस्ट्रेलिया टीम से खेला है। बहुत पुराना बॉक्सर है वो, और ऑलरेडी यहाँ का होम क्राउड है तो उसको सपोर्ट मिला स्ट्रॉन्ग।
52 किलोग्राम में गौरव सोलंकी को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। विकास किशन ने भी जैम्बिया के बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैंने विकास से पूछा कि कैसा था उनका ये मुकाबला।
इजी था, इतना मैंने सोचा था कि इजी होने वाला, वैसे ही बाउट थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे को एक दोबारा हेडबट लग गए, उसी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बाउट इजी थी।
दूसरी बॉक्सर पिंकी रानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, लेकिन 60 किलोग्राम वर्ग में मुकेश कौशिक ने इंग्लिश बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस तरह से राजेश 8 भारतीय बॉक्सर अब तक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी सफलता बॉक्सिंग में शायद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक नहीं मिली है।
लेकिन अगर हॉकी की बात नहीं की जाएगी तो हमारी और आपकी बातचीत अधूरी रहेगी। रेहान, तो हॉकी कि क्या खबर है?
हॉकी में भी अच्छी खबर है। भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया। एक गोल से वो पिछड़ रहे थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में उन्होंने बराबर किया और चौथे क्वार्टर में उन्होंने 3 गोल दाग दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमीफाइनल में तो वो पहले ही पहुंचे हुए थे, अब उन्हें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से नहीं भिड़ना पड़ेगा। अपेक्षाकृत आसान मुकाबला होगा सेमीफाइनल में भारत का।
गोल्ड कोस्ट से रेहान फजल। लेकिन अब सुर्खियों के लिए समय नहीं बचा है। फिलहाल दिन भर में इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, और इसे फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्रा ने। मैं राजेश जोशी अभी अपने सभी साथियों की ओर से आपसे विदा चाहता हूं। कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।